परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
हमको मसीह इस जहान में चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है, ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एक विश्वासी का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। उसका जीवन आत्मा से भरपूर होना चाहिए, जो नम्र और दीन हो, और इतना ही नहीं, वह ज्योति की तरह अपने जीवन से लोगों को प्रकाशन दे। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, हम इससे प्रत्येक के जीवन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हृदय और विचारों को खोल दीजिए, हमें एकाग्रता पन दीजिए, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन हमें से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हमें हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, चिंताओं में हैं या किसी प्रकार के दबाव में हैं। प्रभु जी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। आज के इस अध्ययन के द्वारा आप उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। धन्यवाद प्रभु हमारी विनती सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 से 24 पद में। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 से 24 पद। लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। प्रिय श्रोता मित्रों, मैं अधीन शब्द पर खोज कर रहा हूँ और मेरे पास आपके लिए कुछ विस्मयकारी जानकारियां हैं। पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। यह अधीन शब्द का अर्थ वह नहीं जो हम अब तक समझते आ रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि पत्नियां अपने अपने पति की आज्ञाकारी रहें। अधीन एक कोमल शब्द है, यह एक प्रेमपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है अपने पति से वैसी ही प्रतिक्रिया दिखाओ जैसी प्रभु को दिखाते हो। हम प्रभु को प्रेम की प्रतिक्रिया दिखाते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। यह भी ध्यान में रखें, अपने अपने पति के अधीन। व्यक्तिगत और प्रेम का संबंध अधीन होने से बनता है। पौलुस विश्वासियों से मसीह विवाह के संबंध में चर्चा कर रहा है। पति पत्नी के इस संबंध में पति की भूमिका अधिक सक्रिय है। वही है जो प्रेम करता है, वह परिवार में भी अधिक सक्रिय है, वही जीविकोपार्जन करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आदेश देने वाला कप्तान है, पत्नी उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया दिखाए जैसी विश्वासी प्रभु के साथ दिखाता है प्रेम के संबंधों में। एक बार की घटना है कि एक मनुष्य मेरे कार्यालय में आया और बोला, मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी को परामर्श दें, अर्थात सलाह दें। वह पत्नी का सा व्यवहार नहीं कर रही है, वह समझ नहीं पाया, परंतु वह अपनी विफलता का वर्णन कर रहा था। उसकी यह प्रतिक्रिया दर्शा रही थी कि वह कैसा पति है। मैंने उससे पूछा, क्या आपने इन दिनों उससे प्रेम प्रदर्शन किया है? उसने कहा, नहीं, वह जानती है कि मैं उससे प्रेम करता हूं, मुझे प्रेम प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। मैंने उससे कहा, आपको इसकी आवश्यकता है, आवश्यक नहीं कि वह आपसे कहे कि वह आपसे प्रेम करती है, यदि आप पहले उससे न कहें कि आप उससे प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, पुरुष पहले करेगा तब पत्नी प्रतिक्रिया दिखाएगी। पुरुष को कहना है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वही प्रस्ताव रखता है और पत्नी कहती है हाँ। पत्नी से नहीं कहा गया है कि वह कहे मैं तुमसे प्रेम करती हूं, जब तक कि उसका पति न कहे मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जी हाँ, यदि कोई कहे कि उसकी पत्नी उदासीन है तो इसका अर्थ है कि वह स्वयं उदासीन है, उसे जैसा पति होना है वैसा वह नहीं है। पत्नी का उत्तरदायित्व पहल करने का नहीं है, उसकी भूमिका है प्रेम की अधीन होना, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। कैसे? यह प्रेम का संबंध है और पति को व्यवस्थानुसार सिर होना है। इफिसियों की पत्री में आप चार विभिन्न क्षेत्र को देखेंगे। जी हाँ, व्यवस्था के लिए सिर का उल्लेख आया है। पत्नियों को अपने अपने पतियों के अधीन रहना है, पतियों को मसीह के अधीन रहना है, बच्चों को माता पिता के अधीन रहना है, सेवकों अर्थात दासों को स्वामियों के अधीन रहना है। यह अधीनता सद्भाव की है, स्वेच्छा की है, क्योंकि जिसके अधीन रहना है वह प्रेम करता है। यदि प्रेम न हो तो अधीन होना उंगली हिलाने योग्य भी नहीं है। मैंने अपनी सेवा में विवाह संबंधित बहुत परामर्श दिए हैं और मैं निश्चय ही कहूंगा कि 100 में से 75 विवाहों में दोष पतियों पर है। पुरुष ही है जिसे प्रेम की ज्योति को जलते हुए रखना है। सुलेमान के एक अति उत्तम गीत में वर वधु से कहता है, श्रेष्ठ गीत 1 उसके 15 पद में, तू सुंदरी है हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है। और पद 16 में वधु प्रतिक्रिया दिखाती है, हे मेरे प्रिय तू सुंदर और मन भावन है। 2 अध्याय के 16 पद में, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं, पहले पति अपना प्रेम प्रकट करता है। इसके पश्चात पत्नी इसका प्रतिक्रिया दिखाती है। कोई कहेगा, मैं बड़ा सिद्धांतवादी वरन रोमानी हूं, परंतु अदन की वाटिका में ही परमेश्वर ने पति पत्नी को ऐसा बनाया है। परमेश्वर ने एक रोमानी दंपति से ही आरंभ किया था। उसने आदम को तब तक पत्नी नहीं दी थी जब तक कि उसे उसकी आवश्यकता का बोध नहीं हुआ था। वह उसे सहायक के रूप में दी गई थी। सहायक से अभिप्राय है अर्धांगनी। पत्नी के बिना पति आधा ही है। अब कोई युवा कहे, प्रचारक मैं ऐसा नहीं हूं, मैं कोई हीरो नहीं, परमेश्वर ने तो नहीं कहा है कि सब लड़कियां आप पर जान छिड़केंगी, 99 लड़कियां आपको देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, परंतु एक दिन एक स्त्री आकर आप में एक हीरो देखेगी। परमेश्वर ही किसी विशेष स्त्री को किसी विशेष पुरुष के प्रति ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। मेरे प्रियो, यदि आप एक युवती हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद आपके नाक नक्श और शरीर में आकर्षण नहीं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप प्रत्येक पुरुष को आकर्षित करेंगी, ऐसा तो पशु ही करते हैं। 99 पुरुष आपको कूड़ा समझते हैं और कूड़ा समझकर चले जाते हैं, परंतु एक दिन एक ऐसा पुरुष आएगा जो आपसे प्रेम करेगा, आप उसकी प्रेरणा बन जाएंगी, ऐसी महान प्रेरणा कि शायद वह एक पुस्तक लिख दे या कलाकृति रचे। यदि आप उसकी प्रेरणा हैं तो उसे अनदेखा ना करें, उससे दूर ना भागें। परमेश्वर ने आपको शायद इस महान उद्देश्य के निमित्त ही रखा है। आप कहेंगे, पास्टर साहब, आपकी बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं, यथार्थ में ऐसा होता नहीं है। जी हाँ, आपका कहना गलत है, ऐसा ही होता है। मैथ्यू हेनरी की टीका पढ़कर आप कहेंगे कि उसके जीवन में रोमांस कभी नहीं रहा होगा, परंतु मैं आपको बताता हूं कि युवावस्था में उनका जीवन बड़ा ही रोमांसपूर्ण था। वह गरीब थे, परंतु उन्हें एक अभिजात युवती से प्रेम हो गया। वह युवती भी उनसे प्रेम करने लगी। जब उसने अपने पिता से इसका उल्लेख किया तो उसके पिता ने उसे निरुत्साह करते हुए कहा, उस युवक की पृष्ठभूमि हम नहीं जानते, हम यह भी नहीं जानते कि वह कहां से आया है। उसने अपने पिता को उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं यह तो नहीं जानती कि वह कहां से आया है, परंतु यह अवश्य जानती हूं कि वह कहां जा रहा है और मैं उसके साथ जाना चाहती हूं। और वह उसी के साथ शादी करके चली गई। ऐसे ही नथनियल हाथ्रोन के साथ था। उन्हें अपनी अयोग्यता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। वह निराश घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनके गले में बाहें डालकर कहा, अब आप वह काम कर सकते हैं जो सदा करना चाहते थे, अब आप लिखना आरंभ कर दें। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। जीवन में ऐसा होता है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मेरे प्रियो, मसीही परिवार के लिए पौलुस के निर्देश सिखाते हैं कि मसीही परिवार मसीह और कलीसिया के संबंधों का दर्पण है। कलीसिया के साथ मसीह के संबंध पति पत्नी के संबंधों से भिन्न है। मसीह कलीसिया का सिर है और देह का उद्धार करता है, जबकि पति पत्नी का उद्धार करता नहीं है। परंतु अधीनता के संबंध में पत्नी पति के अधीन रहे और प्रभु यीशु के भी अधीन रहे। हम आगे देखते हैं कलीसिया की आशा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। परमेश्वर किसी भी स्त्री से नहीं कहता कि वह ऐसे पति के अधीन रहे जो उससे ऐसा प्रेम न करता हो। यह एक ऊंचे स्तर का मसीही प्रेम है। आज युवा वर्ग यौन संबंधों की शिक्षा पा रहा है और विवाह पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप मुझे पुराने विचारों का समझेंगे, क्योंकि इन पुस्तकों को मैं कूड़ा समझता हूं। केवल एक विश्वासी ही जान सकता है कि विवाह में सच्चा प्रेम क्या है, क्योंकि वह प्रेम कलीसिया और मसीह के उच्च स्तरीय प्रेम तक जाता है। मेरे मित्रों, इस प्रेम के तुल्य और कुछ भी नहीं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ध्यान दीजिए, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यह हो चुका है। वर्तमान में वह परमेश्वर के वचन के जल से कलीसिया का शोधन कर रहा है। परमेश्वर का वचन सबसे उत्तम साबुन है। वह दाग मिटाता ही नहीं, दाग लगने से भी बचाता है। ये जीवन के दाग हैं। मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 27 पद में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। भविष्य में एक दिन वह उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। उसमें न कलंक होगा न झुर्री होगी, वह पवित्र और निष्कलंक होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में हम देखेंगे कि कलीसिया मसीह को ऐसे सौंपी जाएगी, जैसे वधु अपने वर के लिए श्रृंगार करके लाई जाती है। विवाह के समय प्रत्येक वधु सुंदर दिखती है। मैंने अनेक विवाह संस्कार संपन्न किए हैं और देखा है, परंतु एक भी कुरूप वधु नहीं दिखी है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि विवाह के बाद सब वधुएं सुंदर नहीं दिखती हैं, परंतु विवाह के दिन वे सब सुंदर दिखती हैं। कोई पुरुष यह नहीं चाहेगा कि उसकी होने वाली पत्नी महाक्लेश के कष्टों में पड़े। तो आप उन लोगों की बातें कैसे मान लेंगे कि कलिसिया महाक्लेश में यहाँ रहेगी? कलिसिया की बात प्रभु से लगी है और वह उसे वचन के जल से शुद्ध कर रहा है। वह प्रत्येक विश्वासी को उस महान घटना के लिए धोकर शुद्ध कर रहा है। जी हाँ, यह एक वर्तमान क्रिया है। हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल तीनों समयों में होने वाले काम देखे हैं। मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम रखा और अपने आप को उसके लिए दे दिया। आज वह वचन के जल से उसे शुद्ध कर रहा है। भविष्य में कलीसिया पाप से शुद्ध करके तेजस्वी रूप में मसीह को सौंप दी जाएगी। उस दिन कलीसिया पवित्र और निष्कलंक होगी। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पति और पत्नी के प्रेम में किस प्रकार का संबंध होना है। यहाँ पर इस अध्ययन में हम विशेष करके पौलुस के द्वारा इन बातों को सीख रहे हैं कि पति पत्नी जिस प्रकार से एक दूसरे का आदर करते हैं। पत्नी को कहा गया है कि वह अपने पति के अधीन रहे। इसका मतलब यह नहीं कि उसका पति उसके प्रति क्रूर हो, परंतु यहाँ पर हमें बताया गया है कि उन्हें नम्रता और दीनता से एक दूसरे का आदर करना है, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। हमने कई उदाहरणों को देखा है कि पति पत्नी किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विश्वासी के लिए यह अवश्य है कि हम परमेश्वर की निकटता में रहते हुए दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। हमें कहा गया है हम हर एक विश्वासी को, कलीसिया को, कि हम मसीह की दुल्हन हैं। हम तैयार किए जा रहे हैं। एक समय आएगा जब हम मसीह के दुल्हन के रूप में होंगे और मसीह हमें अपने राज्य में ले लेगा। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार से है। आज जब हम इस संसार में अपनी नजरों को उठा करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे परिवार टूटे हुए हैं। बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां अपने जीवन में निराश हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन अपने पारिवारिक जीवन में आनंदमय नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वे परमेश्वर से वंचित हैं, उसके प्रेम से वंचित हैं। और यही कारण है कि परिवार टूट रहा है। शैतान नहीं चाहता कि आपका परिवार आशीषमय हो। वह नहीं चाहता कि आप आनंद से रहें। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन में इस बात का निर्णय लें, अपने आप को जांचें, टटोलें, परखें और प्रभु के पास आकर कहें, प्रभु, इस परिवार को आपने जोड़ा था, वो प्रेम जो पहला सा प्रेम मेरे पति के प्रति, मेरी पत्नी के प्रति आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उसे आदर दे सकूं। जी हाँ, आज आप अपनी पत्नी को आदर दें, पति अपने पत्नी को आदर दें, और निश्चय जाने कि आप एक दूसरे में और दृढ़ और बलवंत होते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को रचा तो उसने उनकी आवश्यकताओं को देखा। जब आदम अकेला था, परमेश्वर ने उससे कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इसी प्रकार उसने आज मनुष्यों के लिए भी एक जीवन साथी का प्रबंध किया है। हो सकता है कि आप अभी अविवाहित हैं, अपने जीवन संगनी या साथी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र, आज से ही आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से एक सही जीवन साथी की मांग करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी अपने जीवन साथी के इंतजार में था और मैंने प्रार्थना आरंभ की और 10 साल के बाद मुझे मेरी जीवन संगनी मिली। यह बहुत लंबा समय था, लेकिन मैं आज आनंदित हूं क्योंकि वह मेरे साथ मिलकर प्रभु की सेवा में हाथ बटाती है। आज आप भी ऐसा ही प्रार्थना करें। मैं नहीं सोचता कि आपको भी इतना लंबा समय रुकना पड़ेगा, परंतु धीरज रखें। परमेश्वर जो भी करता है आपके भले के लिए करता है। आइए आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, आज की इस वचन के प्रकाशन में कि उसके अधीन, पति अपने पत्नी के अधीन, पत्नी अपने पति के अधीन रहे। और यह कैसे? प्रेम के साथ। एक विश्वासी को एक दूसरे को आदर देने के लिए कहा गया है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें और मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने हमें फिर से इस बात का स्मरण दिलाया है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने हमें पति पत्नी के रूप में संसार में रखा है ताकि हम एक दूसरे को आदर दे सकें। इतना ही नहीं, आप चाहते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते, एक कलीसिया के रूप में, एक दुल्हन के रूप में हम तैयार किए जाएं, ताकि जब आप हमें लेने के लिए आए, हम शुद्ध, पवित्र, नम्र और दीन पाए जाएं और आपके साथ, आपके निकटता में अपने समय को व्यतीत करने पाएं। पिताजी, हमारी प्रार्थना आज के दिन उन भाई बहनों के लिए है जो अपने पारिवारिक जीवन से निराश हैं, उनके परिवार टूटे हुए हैं। उनके जीवन पर आप कृपा दृष्टि करें, उनके जीवन के पारिवारिक जीवन को फिर से आप जोड़ दें, ताकि आपकी उपस्थिति उस जीवन में, उस घर में पाया जाए, आपको आदर मिल सके, आपको सम्मान मिल सके, क्योंकि हम जानते हैं यह सिर्फ आपके द्वारा ही संभव हो सकता है। पति पत्नी को अच्छी समझ दे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे, ताकि एक दूसरे को आदर देने पाए। धन्यवाद प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने बहुत ही बहुमूल्य विषय को सीखा है। अपने जीवन में इसे लागू करें और उसके प्रेम में, उसकी अधीनता में बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जब जब मेरा